विषय है ईश्वर भक्ति और मूर्ति पूजा। सही पूजा क्या है ये जानने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा की क्यों जाती है। क्योंकि यदि पूजा से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो पूजा का लाभ क्या हुआ। तो सबसे पहले गुरुदेव के वचनों के आधार पर इसका निर्णय किया जाए कि पूजा की क्यों जाती है। इस चैप्टर इसमें देवी देवताओं ग्रहों की पूजा का सिद्धांत पेज 149 उसके मैं तीन वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। सबसे पहला वचन नंबर 37, तृष्णा रूपी अधिक रोग से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। तृष्णा रूपी अधिक रोग से छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। तो अधिक मतलब है दीर्घ रोग। ये मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है वो है तृष्णा का, इच्छा का या वासना का। और संसार में जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे इसके साधन बढ़ते हैं, जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ती है, वैसे ही वैसे तृष्णा का रोग ये और बढ़ जाता है। लगता तो ऐसे है कि जैसे हमारे साधन बढ़ेंगे, जैसे हमारी संपत्ति बढ़ेगी, वैसे ही वैसे मेरी जो है इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन होता है इसका उल्टा कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो और मल्टीप्लाई हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। इसीलिए समाज के अंदर जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, जो हम देखते हैं कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है समाज का, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही वैसे आग इस संसार में और तेजी से लगती चली जा रही है। इंसान और शैतान होता चला जा रहा है। देशों के एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत की और जो ये वासना ये बढ़ती चली जा रही है, और उसका परिणाम है कि लड़ाई के सामान का उत्पादन दिन दुना रात चौगुने गति से बढ़ता चला जा रहा है। और हर देश दूसरे देश से डरता है कहीं मैं कमजोर ना रह जाऊं और दूसरा मुझ पर आक्रमण ना कर दे। तो जैसे जैसे ये सांसारिक विकास हो रहा है, जिसको हम बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं, हम भी एक दिन विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, लेकिन ये विकास की गति मनुष्य को सर्वनाश की तरफ ले जा रही है। इसकी तरफ दृष्टि किसी की भी नहीं। महाराज जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जैसे जैसे ये विकास होगा वैसे ही वैसे मनुष्य धीरे धीरे सर्वनाश की तरफ चला जाए। इसी आधार पर महाराज जी ने जो है वो सत्संग का जब प्रवचन चल रहा था उसमें एक वचन आया था कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं वो जगह और वो लोग एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये होना ही होना है। बिना सद्विचार के, बिना सद्बुद्धि के यदि आपका सामाजिक डेवलपमेंट हो भी गया तो वो आपको सर्वनाश की तरफ ले जाएगा और दूसरा रास्ता कोई बचता ही नहीं है आपके। इसलिए लाजिमी है कि उस जो सामाजिक डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, या यूं कहिए कि जो आपका पैसे का विकास है, शिक्षा का विकास है, या साइंस का विकास है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी कंपलसरी है। क्योंकि आपके पास जैसे कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों का उपभोग या यूज इस्तेमाल यदि आप शरीर के भोगों के लिए करने लगे तो शरीर आपका रोगी होगा जरूर। इंद्रियों का ठीक उपयोग क्या करना है इसके लिए गाइडेंस आपको अध्यात्म से मिलती है। महाजी कह रहे हैं कि मर्यादा में रहते हुए, ये मर्यादा शब्द का इस्तेमाल ये आध्यात्मिक शब्द है। जब व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर चलता है तभी मर्यादा की बात कर सकता है, अन्यथा मर्यादा की बात तो आपकी जबरदस्ती वाली होगी। शुगर का पेशेंट हो गया तो मैंने शुगर नहीं खानी, वो जबरदस्ती वाली बात है। तो आपने अपनी बर्बादी अपने हाथों से करनी ही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका विकास होता है सामाजिक रूप में, वैसे ही वैसे आपकी तृष्णा और तीव्र होती चली जाती है। और तृष्णा रोग है, ये डिजीज है, और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी डिजीज है। ये जन्म ही बर्बाद नहीं होता, उसका अगला जन्म भी बर्बाद कर देती है, ये ऐसी डिजीज है। और इस डिजीज से बचने के लिए वो कहते हैं कि एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। ईश्वर भी कैसा, अखंड और अविनाशी। जो अविनाशी है और अखंड है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बताइए वो रूप के अंदर कैसे समाहित हो सकता है। वो वर्ड यूज कर रहे हैं लाजमी, लाजमी का मतलब होता है कंपल्सरी, इसमें कोई आपका कंसेशन नहीं है, आपका कोई सिलेक्शन नहीं है इसमें। यदि आपने इस तृष्णा के रोग से मुक्ति पानी है, तो आपको ईश्वर के उस रूप की उपासना करनी ही पड़ेगी जो अखंड है और अविनाशी है। जहां वो रूप में हुआ तो उसकी सीमा होगी ना, मेरा रूप है तो मेरी सीमा भी है, मेरी लिमिट है तभी तो रूप है। यदि लिमिट खत्म कर दिया है तो क्या रूप होगा? आकाश जैसे देखिए कि लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसका रूप भी कोई नहीं। जिस वस्तु की भी लिमिट नहीं होगी उसका रूप भी नहीं हो सकता। ये बड़ी सीधी सी बात। देश काल टाइम स्पेस जिसको बोलते हैं, देश काल की मर्यादा में जो चीज आती है उसी का रूप हुआ करता है। तो सारा जो हमारी इंद्रियों का व्यापार है ये रूप के अंदर है, नाम रूप के अंदर है। तो इसीलिए ये इससे यदि ऊपर उठना है तो हमको अखंड अविनाशी रूप की उपासना करनी ही पड़ेगी यदि हमने इस तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति पानी है। क्योंकि तृष्णा कहां उठती है, तृष्णा का स्रोत कहां है, मन है ना, और मन अपने आप में निराकार है। जो तृष्णा का स्रोत है, जहां से ये रोग पैदा हो रहा है, उठ रहा है, उस सत्ता को ही तो आपने खत्म करना, मन की सत्ता को ही खत्म करना है आप, अर्थात उस हालत में पहुंचना है जहां संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए। तो अब बताइए, रूप से तो संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, तो कैसे आप इस तृष्णा के रोग से ऊपर उठ सकते हो? तो संसार में जितनी भी उपासनाएं कर ली आप, यदि वो उस अखंड अविनाशी रूप की उपासना नहीं है तो वो आपकी तृष्णा को लोग को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए देखिए, जितने भी सत्पुरुषों की समानता जो आपने अभी प्रवचन सुना था, उसमें सारे सत्पुरुष उस एक अखंड अविनाशी ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं और उसी की वो प्राप्ति कर रहे हैं। है कोई भेद? तो हम लोग जो इन सत्पुरुषों को मानने वाले लोग हैं, इन पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो इनकी बात को नहीं मानते, अपनी मनमानी करते, कहते दुनिया उधर चल रही है तो हमको भी चलना चाहिए। क्या हिंदुस्तान की जनसंख्या यदि 115 करोड़ है, 115 करोड़ में से 114 करोड़ लोग यदि मूर्ति उपासना कर रहे हैं तो 114 करोड़ गलत हुए या 1 करोड़ सही होंगे? तो बहुमत जिसका वही सही होता है, हमारी धारणा तो ये। तो सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर होता है। हमारी क्या सोच है, हमारी क्या धारणा है, हमने समाज से क्या सीखा है, इन बातों से इसका निर्णय नहीं हुआ करता। चाहे सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, लेकिन सत्पुरुष की बात हमेशा अटल रहती है, वही फाइनल होती है। इसीलिए इस बात का निर्णय हम सत्पुरुषों के वाक्यों के आधार पर ही करेंगे। दूसरा वचन कहते हैं, कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। हम पूजा क्यों करते हैं? कर्मों का फल हमारे मन के अनुकूल हो। हम जो भी कर्म करें, हम जो चाहते हैं, जिस वास्ते हम कर्म करते हैं, हमको वही चीज की प्राप्ति होनी चाहिए ना, उस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए हमको, उस फल की प्राप्ति होनी चाहिए हमको। लेकिन ऐसा होता नहीं। कर्म करने का अधिकार तो ईश्वर ने हमको दिया है, लेकिन फल में हम बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए गीता में क्या, कर्मण्य वाधिकार से मां फलेशु कदाचना, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। यदि तू फल में अधिकार रखना चाहेगा तो हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि फल में अधिकार हो ही नहीं सकता तेरा। कर्म तो जैसा चाहे कर सकता है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। इस सिद्धांत को हम अच्छी तरह समझ ले। नहीं तो ये सूत्र गीता में आता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे हमारे मन की बेचैनी दूर करना चाहती है ना गीता। और हम कर्म जो करते हैं वो निश्चित फल प्राप्ति के लिए करते हैं, और वो हो भी सकता है प्राप्त और नहीं भी हो सकता। ये विधान क्या है ये ईश्वर ही जानता है इस बात। तो इसीलिए ये सिद्धांत है कि पूजा क्यों की जाती है ईश्वर की, कि ईश्वर की पूजा करने वाला ही इस बात को समझेगा, इस बात को मानेगा वो कि भाई कर्म तो मैं करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है मुझे, वो मैं करूंगा सोच समझ के, लेकिन उसका फल क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर ईश्वर की पूजा लाजमी है। मैंने धैर्य रखना सीखना है कि प्रभु आज्ञा से जो भी फल होगा उसको मैंने एक्सेप्ट करना है, और खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है, रो रो के नहीं। रो रो के तो मैं बिना ईश्वर को माने भी करता हूं, मैंने खुशी से उस फल को एक्सेप्ट करना है। इसलिए माई कहते प्रेमी ईमानदारी से समाज संसार में रहकर कमाई करो, पैसा कमाने को मना कोई नहीं करता, ईमानदारी से कमाओ और उसके पश्चात जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोषवान रहो। हम क्या करते हैं, यदि ईमानदारी से कमाया, कमाई यदि कम हुई तो कंप्लेंट करते हैं, अरे महाजी ने कहा था ईमानदारी से कमाई करोगे तो सुखी रहोगे और मैं तो दुखी हो गया। अरे तेरे भाग्य में जितना है उतना मिलेगा ना तुझको, चाहे तो ईमानदारी से कमाई कर चाहे तो बेईमानी से कमाई कर। लेकिन यदि बेईमानी से कमाई करी तो दुखों के सागर में तू डूब जाएगा, ईमानदारी से कमाई करी तो ईश्वर का रास्ता तेरे लिए खुला रहेगा, तू सारी मुसीबतों से बच जाएगा धीरे धीरे कर। जो खर्च तेरे 1 लाख में होते थे अब वो खर्च तेरे 10,000 में होने लगेंगे, तुझे पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो दूसरा जो उद्देश्य है ईश्वर पूजा का वो है कि कर्मों का फल क्योंकि सुखरूप और दुखरूप होता है और इसमें जीव बेचैन होता है, वो सुख चाहता है दुख नहीं चाहता, मिलते दोनों हैं उसको, तो इसीलिए उसको फल को भोगने में धैर्य बना रहे, संतोष बना रहे। जब संतोष बना रहेगा तभी आपकी मन की बेचैनी कम होगी, इसीलिए वो तभी संभव है जब हम ईश्वर की सही उपासना करते हो। और बल्कि आगे वो कहते हैं कि कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सही रूप में तो बात यह है कि केवल धीरजवान नहीं, इससे आगे आगे भी आप पहुंच जाओगे कि कर्मों के फल से ही आप ऊपर उठ जाओगे, वो आपके जो कर्म है वो निष्कामता में बदल जाएंगे। तो उपासना आपको कहां ले जाएगी, शुरू शुरू में तो पहली स्थिति में तो आप कर्मों के फल में धीरजवान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी पूजा एडवांस होगी आगे उसमें प्रगति होगी वैसे वैसे क्या होगा, कर्मों के फल की आसक्ति से ही आप विरक्त हो जाएंगे, उसमें निरासक्त हो जाएंगे। और निरासक्त कब होंगे, जब अभी आपका जीवन कर्मों के फल पर चल रहा है, फिर आपका ईश्वर के अनुभव पर जीवन चलेगा, अंदर जब ईश्वर का आनंद प्रकट होगा फिर आप उसके लिए जियोगे ना कि कर्मों के फल के लिए। इसलिए अल्टीमेटली आपको पूजा जो है कर्मों के, ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये निर्द्वंद अवस्था तभी प्राप्त होती है जब ईश्वर का अनुभव इस जीव को पूजा, सही पूजा अपना के ईश्वर का अनुभव ये जीव कर लेता है। तीसरी बात, निर्भय निर्वासना होने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। हम बड़े ही भयभीत रहते हैं, सब कुछ ठीक करके भी भय हमारा नहीं जाता। अभी बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेंगे बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन भय बना रहेगा पता नहीं भाई घर जा, बच्चों को आजकल तो फोन भी जेब में रख देती है पेरेंट्स जो है, वो कहते हैं स्कूल जाते ही फोन कर देना कि ठीक ठाक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। आप भी यहां आया होगा, सबसे पहले पत्नी ने यही कहा होगा जाते ही फोन कर देना ठीक ठाक पहुंच गया नहीं पहुंच गया, और बीच में ये फोन आया होगा अरे भाई ठीक ठाक हो नहीं, बीमार वाले तो नहीं पड़ गए कहीं। तो क्या हालत हो गई हमारी कि हर समय चिंतायुक्त चिंताग्रस्त ही रहते। ये पता हो तो ये भी कि ठीक जगह गए व्यवस्थित रूप में जब पहुंच गए तो ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी चिंता लगी, हमारी यही हालत है। एक हमारा मित्र था दिल्ली में जब मैं सर्विस करता था, वो अपना जब रूम बंद करके आता था, नीचे उतरता था, तो फिर वापस जाता था, वो ताला हिला के देखता था, अरे कहीं बंद कर दिया नहीं कर दिया। और मैंने खुद देखा उसको, तीन तीन बार उसने इस क्रिया को दोहराया। इतना डाउट अपने ऊपर कि मैंने बंद कर दिया या नहीं कर दिया। तो हमारे ये भय के कारण होता है, ईश्वर का भरोसा ही नहीं है। एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, देखिए आप प्रैक्टिकली देखिए उसको। मैं पुअर लड़कों की बात नहीं कर रहा जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़ने में होशियार होते हैं। ऐसे बच्चे भी जिनको होशियार हैं, उनको पता है कि 90% मार्क्स आएंगे इनके, लेकिन जब पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देने जाते हैं, उनकी दिल की क्या हालत होती है जरा आप यदि मेडिकल चेकअप करके देखो पता लग जाएगा क्या दिल की धड़कन उनकी तेज चलती। ये भय क्यों है? ये भय इसीलिए है कि हमको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, हमने ईश्वर पर डिपेंड होना सीखा ही नहीं है, हमने केवल संसार पर डिपेंड होना सीखा है, जहां हर वस्तु परिवर्तनशील है, जहां निश्चित कुछ है ही नहीं। आप पूरी रात भी पढ़ लो, कल को पास भी हो गए या नहीं हो गए, ऐसी गारंटी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। हो सकता है जिस समय पेपर आए उस समय आपके चक्कर आना शुरू हो जाए, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, आपको एग्जाम दे ही ना पाओ, या आपकी मेमोरी अचानक वॉश आउट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ करके भी आपको मन अनुकूल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी संसार में कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण व्यक्ति भयभीत रहता है, हर वक्त जो है वो कोई ना कोई भय उसको बना रहता है। दुकान में बैठा है तो पता नहीं मेरी बिक्री आज होगी नहीं होगी, पता नहीं कोई मुझको जो है वो पैसा वसूल करने तो नहीं आ जाएगा, कोई ना कोई आपको जो है मानसिक तनाव जो आपके में बना रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि निर्भय निर्वास होने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। लेकिन जो ईश्वर की उपासना करता है वो जानता है कि अनहोनी कुछ होने वाली नहीं है। जैसे एक प्रेमी कहते हैं अकाल मौत हो जाती है, क्या होता है अकाल मौत नाम की वस्तु अध्यात्म में कोई होती ही नहीं है, ये समाज में होती है। जो अध्यात्म विद्या जानते हैं वो जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अकाल नाम की वस्तु कोई है ही नहीं, हर घटना समय पर ही घटती है। इसी करके कहा जाता है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो ठीक ही करता है, या अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं होती इस सृष्टि के अंदर, जो होती है प्राणी के अंतर्गत होती है, हमको उस बात का पता हो चाहे ना हो। इसीलिए सत्पुरुष बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई चिंता फिक्र किसी प्रकार की नहीं होती। जब महाराज जी पाकिस्तान से आए इधर और जब ये अंबाला के पास ठहरे हुए थे, बलदेव नगर वहां काफी रिफ्यूजी को ठहराया गया था, तो महाराज जी कुछ शिष्य भी वहां पर मौजूद थे। जब उनको पता लगा कि महाराज जी आए हुए हैं तो उन्होंने शाम को जो है वो घेर के बैठ गए महाराज जी के पास, तो अपना अपना दुख दर्द जो है रोने लगे, किसी की पत्नी चली गई, किसी के बच्चे मार दिए गए, किसी का पैसा सब रह गया, बड़ी बुरी दुर्दशा थी लोगों की। तो महाराज जी के पास जो है जब सब रो चुके अपना अपनी अपनी कथा कह चुके, उसका महाराज जी ने बस इतना ही कहा, प्रेमियों सब राज इनको रोशन है, सब राज इनको रोशन है, लेकिन चारा कुछ नहीं। सत्पुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता होता है, पहले भी चेतावनी देते रहे थे, पाकिस्तान में भी देते रहे थे कि बड़ा खराब वक्त आने वाला है, प्रेमियों मिलकर बैठना सीखो, मिलकर रहना सीखो, लेकिन किसी ने उनके नहीं सुनी। लेकिन क्या होने वाला था उनको पता था, लेकिन कह रहे हैं चारा कुछ नहीं, मतलब जो कठिन वक्त आया है प्रारब्ध के अनुसार वो भोग कर ही कटेगा, गुरु उसमें कुछ नहीं कर सकता। गुरु तो आपको सांत्वना दे सकता है, ये ज्ञान दे सकता है कि भाई जो आज वक्त आया है ये तुम्हारे ही अपने कर्मों का फल है, इसमें अनहोनी नाम की कोई वस्तु नहीं, तो अपने कर्म का फल भोगने तो तैयार रहना चाहिए जीव को। ये कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है, ये तुम्हारे ही अपने कर्मों का फल इस रूप में सर्वनाश के रूप में आज सामने आया है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है ये कर्म फल भोगने में धैर्यवान तभी रहता है और निर्भय तभी रह सकता है जब ईश्वर में उसकी पूर्ण श्रद्धा हो, और पूर्ण श्रद्धा तभी होती है जो ईश्वर की ठीक उपासना करने वाला हो। अब देखिए अगला कि पूजा किसकी करनी चाहिए, ये भी सुन, क्योंकि हमें निर्णय तो किसी निर्णय पर पहुंचना है। समाज में पूजाएं देखते हैं, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए उसके बारे में इसी चैप्टर का 50वां वचन है, वो मैं पढ़ रहा हूं। अवतार सिद्ध विखीशर गुरु पीर नबी रसूल सब इस परम शक्ति को सिमरते आए हैं और लोगों को भी उसकी महिमा का उपदेश देते आए हैं, मगर बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वरी पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की परस्तिश करानी शुरू कर दी, जिससे उनकी पेट पूजा और जरूरियाते नफसानी अर्थात इंद्रियों के भोग पूर्ण होने लगे। ये देखिए यहां राज छिपा हुआ है, ये हुआ कैसे ये? अब सतपुरुष राज को खोल लें। जिस गली में देखो, जिस मोहल्ले में देखो, जिस चौराहे पे देखो, एक देवता खड़ा हुआ है, ये हो कैसे गया ये? वो कहते हैं कि जितने भी अवतार हुए सिद्ध, जिसको भी हम मानते हैं, सबने एक ईश्वर की उपासना की। अभी भी आपने निर्णय सुन लिया ग्रंथ से। सारे विश्व में कोई भी सत्पुरुष हुआ कहीं पर भी, उसने केवल एक ईश्वर की उपासना की। लेकिन बाद में फरेबी लोगों ने, जिन पर हम विश्वास करते हैं, मुल्ला काजी पंडित ये सब जो जो लोग हैं ना, जो पूजा करवाते हैं, यही फरेबी लोग हैं। बाद में फरेबी लोगों ने अपनी पेट पूजा की खातिर और अपने इंद्रिय भोग पूर्ण करने की खातिर उन्होंने क्या करा, हम जिन पर श्रद्धा करते थे उन्होंने उनकी उन्हीं की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा करवानी शुरू कर दी। अब मान लिया महात्मा मंगतराम जी ने तो एक ईश्वर की उपासना की, हम महात्मा मंगतराम जी की मूर्ति बना के उस पर चरणामृत आरती करना शुरू कर दें, तो कहां महाजी ने कहा कि मेरी पूजा करो? कहीं कहा है, कहीं एक जगह भी? लेकिन जो श्रद्धालु होते ना, कहते हैं हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर को छोड़ देंगे लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे, वो उसी को पकड़ के बैठ जाते। तो ये हुआ हमारे धर्म के पतन का बेसिक मूल जो कारण था। ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ, सारे विश्व में हुआ ये काम। अब देखो ना कि ईसा मसीह को पकड़ के बैठ गए लोग, ईश्वर को भूल गए। ईसा मसीह ने जिसकी उपासना की उसको तो भूल गए, ईसा मसीह को पकड़ लिया उन्होंने। तो ये काम तो हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि वो जो रूप सामने खड़ा ना, हम सोचते इससे हम याचना कर सकते हैं, ये हमारी इच्छाएं पूरी कर देगा, ये हमारे काम बना देगा, बात तो स्वार्थ की है। तो जब हम स्वार्थी हैं तो हमको जो पूजा करवाने वाले लोग हैं वो भी स्वार्थी ही मिलेंगे। वो कहते हैं कि तुम अपना स्वार्थ पूरा कर लो, हम अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, ये गिव एंड टेक वाला मसला है, इसमें बुरी बात क्या है? तो हम अपने स्वार्थ की खातिर गलत पूजाएं अपनाते हैं और फंसते चले जाते हैं। वासना जो खत्म होनी थी, बल्कि वो वासना और पूजा के द्वारा बढ़ा लेते हैं। तो ये राज छिपा हुआ है, इसको बात को ध्यान रखें कि बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वरी पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की पूजा करवानी शुरू कर दी। और अब आप ध्यान से देखिए, यही काम हो रहा है, नहीं हो रहा सारी दुनिया में? इसके पीछे राज यहां छिपा हुआ है, यही धर्म के पतन का कारण बना, यही धर्म के नाम पर लड़ाइयों का कारण बना, सारी लड़ाइयां इसी बात को लेकर होती है। तो इसीलिए जब तक इस गलती को समझेंगे नहीं कि पूजा किसकी करनी चाहिए, तब तक जो है हमारी पूजा सही नहीं हो सकती, ना उसका सही हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए कि मान लिया कोई मूर्ति पूजा करता भी है, तो यदि उसने पकड़ना है कि मूर्ति को ही पकड़ना है, मैंने पूजा ही करनी है, तो कैसे करनी चाहिए इसके बारे में गुरुदेव क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए। ये पेज 139 पे है, मूर्ति पूजा का सिद्धांत है, उसमें से वचन है छठा। महाजी लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में बुत परस्ती यानी मूर्ति की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। उनके फोटो को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर तुम्हारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया था, उस प्रकार से जीवन मैंने भी व्यतीत करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एकलव्य की कथा आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन उनका परम सखा था, परम जो है उनका शिष्य था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धर्म विद्या सिखाने से मना कर दिया था। तो एकलव्य ने क्या करा कि उनके जहां फुटप्रिंट्स थे वहां से धूल लेकर और अपने घर वापस आया और उनकी उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली। उस मूर्ति के आगे ही उसने सारी धनु विद्या सीखी और अर्जुन से भी वो आगे निकल गया। यहां तक कि जब पता लगा द्रोणाचार्य को कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर यहां मौजूद है, तब वो उसके पास आए, तब देखा कि मेरी तो मूर्ति बनी है यहां पर। तो उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, बोले कि मेरे गुरु तो आप ही हैं, आपसे मैंने धनु विद्या सीखी है। तब चालाकी क्या की उन्होंने, क्योंकि वो आध्यात्मिक पुरुष तो थे नहीं, वो तो थे संसारी। तो उन्होंने कहा कि शिष्य का फर्ज है कि गुरु दक्षिणा देना, जब तुमने मुझसे धनु विद्या सीखी है तो दाएं हाथ का अंगूठा जिससे धनु विद्या सीखी जाती है, चलाया जाता है, वो उन्होंने कहा कि इसको काट के मुझको गुरु दक्षिणा में भेंट कर दो। वो तो गुरु भक्त था ही, उन्होंने तुरंत काटा और भेंट कर दिया। बाद में उसने पैर के अंगूठे से धनु विद्या उसने आगे अपनी चलाई थी। लेकिन ये जो महाजी बात कर रहे हैं कि सत्पुरुषों के रूप को देखकर उनका गुण कर्म धारण करना, यह है मूर्ति उपासना यदि सही करनी है। तो जो गुण द्रोणाचार्य में था वो गुण एकलव्य ने अपने जीवन में अपनाया। यदि करनी है तो इस रूप में करो, लेकिन इस रूप में कोई करता है क्या, सोचो। हनुमान जी को देखे, हनुमान जी ने जो राम की सेवा की थी अपने आदर्श की, अपने गुरु की, क्या वो कोई करने को तैयार है? सेवा आप नहीं करवाते हनुमान जी द्वारा, करना तो बहुत दूर की बात रही। कोई देखा है आपने हनुमान भक्त इस प्रकार का? तो यही वो आदर्श है कि यही मूर्ति उपासना करनी है तो उसका आदर्श क्या है, उसका तरीका क्या है, ये नवा वचन इसी का। कहते सत्पुरुषों के स्वरूप को देखकर उनका आदर्श धारण करना लाजमी है। अगर उनका आदर्श धारण ना किया जावे, केवल नमस्कार आरती और चरणामृत से ही जो मुक्ति या आनंद जो चाहते हैं वे अंधकार परस्ती कर रहे हैं, बजाय शांति के अशांति को प्राप्त होंगे। ये चेतावनी भी सत्पुरुष सुन लीजिए। यदि ये आदर्श नहीं है आपके आगे कि जिस मूर्ति की उपासना कर रहा हूं उसका आदर्श मैंने जीवन में धारण करना है, यदि ये आइडियोलॉजी आपके पीछे, ये आदर्श आपका नहीं है पीछे उसका, तब तैयार रखिए कि आप अंधकार परस्ती कर रहे हैं, पूजा के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, और इसीलिए आपको शांति के बजाय अशांति प्राप्त होगी। अशांति किस रूप में होगी कि आपका जो तृष्णा का रोग है वो और बढ़ जाएगा, आपके अंदर भय संसार का ये और बढ़ जाएगा, और जो फल की जो बेचैनी है आपके अंदर वो और बढ़ जाएगी। यही तो अशांति, और अशांति क्या है? और देख लिए ये पूजा करने वालों को, ये अशांति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? तो प्रैक्टिकली इसको देखें समाज पर घटाकर, ये आपको वचन बिल्कुल 100% आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल वचन है। अब देखिए एक वचन और है महाराज जी का, वो सुनाता हूं आपको। 469 पेज पर है वचन नंबर 7। जितने भी सत्पुरुष संसार में आए हैं उनका सत उपदेश ग्रहण करने से कल्याण होता है। जितने भी सत्पुरुष संसार में आए हैं उनका सत उपदेश ग्रहण करने से कल्याण होता है, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। दुर्योधन, कैकेयी और भी लाखों मिसालें मौजूद हैं। अगर महज दर्शन से ही कल्याण होता तो अर्जुन में कायरता पैदा ना होती और श्री कृष्ण को उपदेश ना देना पड़ता। इसलिए सत उपदेश को धारण करने की कोशिश करें, यही उसकी पूजा है और इसी में कल्याण है, विचार करें। कैसा एक वचन गुरुदेव ने लिखा है, हम कभी विचार इस पर करते नहीं है कि दुर्योधन, कैकेयी सब खड़े हुए थे ना। कैकेयी राम के सामने खड़ी हुई थी और दुर्योधन कृष्ण के सामने खड़े हुए थे, तो दुर्योधन वैसे का वैसे ही रहना पापी का पापी, और कैकेयी के मन की भी मलिनता वैसी रही, राम जी के सामने खड़े हुए थे, उन्होंने वनवास दे दिया उल्टा उनको। तो राम के दर्शन करके कैकेयी का कल्याण नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन करके दुर्योधन का कल्याण नहीं हुआ, तो आपका उनकी मूर्ति के सामने दर्शन करके क्या कल्याण हो जाएगा? कभी सोचा इस बात के? अरे साक्षात सामने खड़े हुए तब कल्याण नहीं हो रहा है, आप तो उनकी मूर्ति बना के सब माथा टेक रहे हो, तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? हाँ एक ही हो सकता है, तुम्हारी बुद्धि भी उस पत्थर जैसी बन जाएगी जिस पत्थर की मूर्ति बनी, जो थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी, क्योंकि ना फिर कोई सत्पुरुषों की बातें पढ़ोगे, उस भरोसा लेके मूर्ति का सारी जिंदगी बिता दोगे अपनी, कोई सत्पुरुषों की बात पढ़ने की चाव आपके अंदर नहीं होगा, ना सत्संग का कोई चाव होगा, जब सत्संग का चाव नहीं होगा, शास्त्रों को पढ़ने का आपको शौक नहीं होगा, या जो लोग शास्त्रों को जानते हैं उनके पास बैठने का शौक नहीं होगा, मतलब सत्संगति आपकी नहीं होगी, तो आपकी बुद्धि पत्थर की पत्थर तो रहेगी। तो इसीलिए जड़ की उपासना करके बुद्धि भी जड़ हो जाती है, यह होता है फायदा मूर्ति पूजा का आजकल के संसार में। तो समझे इस बात को अच्छी तरह से, ऐसे ही आपसे सत्पुरुष नहीं कहते कि मूर्ति पूजा मत करो, और हमको बुरा लगता है कि अरे हम तो इतने लोग करते हैं साहब, सब क्या गलती करते हैं क्या? लेकिन इसका निर्णय करके देखो, सत्पुरुषों ने तर्क के आधार पर बातें लिखी, ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने। आपको एक घटना सुनाता हूं, देखो महर्षि रमण दक्षिण में, जैसे महाराज जी हमारे नॉर्थ में हुए, ऐसे महर्षि रमण दक्षिण में हुए और समकालीन थे, उसी पीरियड में हुए। महाराज जी ने सन 54 में शरीर छोड़ा, उन्होंने सन 50 में शरीर छोड़ा। उनके पास एक नॉर्थ का एक पंजाब का ये था मिस्टर पुंज करके, वो उनके एक दिन यहां पर, वो भी मिलिट्री से रिटायर हुए थे, उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि अंदर से ईश्वर का शौक था उनको। क्या था उनको, बचपन से ही कृष्ण उनको दिखाई पड़ा करते थे, जब उनकी 5 वर्ष की आई थी तब से कभी भी अचानक कृष्ण सामने खड़े हो जाते थे और फिर वो गायब हो जाते। तो ये हालत उनका मिलिट्री में भी रहा, इसीलिए उन्होंने कहा चलो मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, मिलिट्री सर्विस छोड़ दिया। एक दिन की बात है, घर बैठे हुए थे तो किसी साधु ने आवाज लगाई और लंच के लिए उसमें बैठे हुए थे वो। तो खैर उनको साधु को उन्होंने कहा अंदर बुला लो, अंदर बुलाया तो बोले कि आप भी भोजन करिए। खैर उनको भी उन्होंने भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि उनकी भी विवेकानंद जैसी आदत थी कि जो भी मिलता साधु उसे कहते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आप मुझे भी ईश्वर के दर्शन करा सकते हो। तो उनसे महर्षि रमण से, वो तो जानते नहीं थे कौन है ये, वो साधु था सादा सा। तो साधु से बोले भी क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने ईश्वर दर्शन किया हो। तो महर्षि, वो साधु बोला कि हाँ मैं जानता हूं कि दक्षिण में एक महर्षि रमण है, उन्होंने ईश्वर दर्शन किया है। तो अच्छा बोले कहां रहते हैं वो, तो उन्होंने बताया तिरुवन्नमलाई में जो है अरुणाचल हिल है वहां रहते हैं। तो ठीक है खैर, वो तो चला गया साधु अपने। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दक्षिण की यात्रा करते, वो क्या हुआ ईश्वर की करनी, उनके पास मद्रास से एक अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं, और साथ में उनको किराया भी मौजूद था, चेक भी था साथ। खैर वो अपने प्रोग्राम बना के मद्रास गए। जब मद्रास पहुंचे तो उन्होंने सोचा सर्विस ज्वाइन करने से पहले क्यों ना 250 किलोमीटर पे तिरुवन्नमलाई है, वहीं हो जाते हैं, महर्षि से मिलाते हैं। खैर वो अपना बेडिंग वेडिंग लेके अपना सीधे तिरुवन्नमलाई आ गए महर्षि रमण आश्रम के। सामान वामान रखा उन्होंने, रखने के बाद जब महर्षि रमण का जो कमरा था उसमें जब प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि जो साधु घर आया था वही साधु बैठा हुआ यहां पर। अब उनके मन में एक डाउट क्या हुआ कि ये लगता है चालाक साधु है, कि अपना एडवर्टाइजमेंट करता घूमता है, पहले लोगों को बताता है कि वहां महर्षि रमण है और बाद में पहले से आके यहां बैठ जाता है। स्वाभाविक है भी कि मन में डाउट आ गया। खैर वो तुरंत वो निकला कमरे से बाहर, अपना बेडिंग उठाया, टांगा किया, उस पर रख दिया। तो इस बीच में क्या हुआ, किसी उनके शिष्य ने देखा कि अभी तो आया था अभी वापस जाने लगा, वो उसके पास पहुंचा, भाई क्या बात है आप अभी तो आए थे अभी वापस जा रहे हो। बोला भाई, उसने सारी बात बता दी, ये बात है कि ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो आज तक जब से यहां पर आए हैं 16 वर्ष की आयु से आज तक कहीं गए नहीं है, और प्रैक्टिकली बात है कि 70 वर्ष की आयु उनकी थी जिस समय उनकी शरीर शांत हुआ है, वो कहीं पहाड़ छोड़ के गए नहीं, सारी जिंदगी कहीं नहीं गए। तो खैर उन्होंने कि आप सामान रखिए, मैं आपकी मुलाकात करता हूं, आपका मैं परिचय कराता हूं, आपको कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई। खैर वो उनको पुनः ले गया महर्षि के पास, बैठे बैठ के परिचय हुआ, उसके बाद उसने अपना प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे जो है वो ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। तो महर्षि रमण ने क्या बोला, बोले तुम ईश्वर दर्शन की बात करते हो, मैं तुमको ईश्वर बना सकता हूं। अब उसने वेदांत पढ़ा नहीं था कुछ, वो समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं ये। खैर वो उठा अपने, टहलता हुआ वो पहाड़ी पे टहलने के चला गया। तो टहलने गया तो वहां फिर उसको कृष्ण के दर्शन हो गए, बचपन से होते थे उसको। लौट के आया फिर वो महर्षि राम के पास बैठ गया, तो फिर उसने सारी गाथा बताई कि मुझे अभी अभी भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। अब महर्षि राम क्या कहते हैं उसे, उन्होंने कहा भाई भगवान कृष्ण के तुझको दर्शन होते हैं इस प्रकार से तो सारी जिंदगी तू परेशान रहेगा, वो कभी प्रकट हो जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे, आज तो तेरी बेचैनी खत्म होनी है आगे भी ऐसी रहेगी, ऐसे क्या फायदा दर्शन का। तब उन्होंने उसको फिर वो आगे का मार्ग समझाया, फिर वो मद्रास से आगे सभी ज्वाइन कर ली, फिर वो आता जाता रहा। अब समझने की बात यहां पर यह है कि हम तो मूर्ति के आगे अपना माथा रगड़ रहे हैं, साक्षात कृष्ण जिसको दर्शन दे रहे हैं और आज के युग में दे रहे हैं, उसका भी बेचैनी मन की बेचैनी वैसी वैसी कायम है। तो ईश्वर की भक्ति तो मन की बेचैनी खत्म करने के लिए ना, और ईश्वर जो है ईश्वर की स्थिति कहां है, जैसा कि आपने शुरू में सुना कि मन इंद्रिया मन और बुद्धि से ऊपर ईश्वर है, तो जब उस क्षेत्र में एंटर करोगे तब ईश्वर के दर्शन होंगे ना। तो अभी तो आप मन की इच्छाओं में जब तक लगे हुए हो कैसे हो सकता है। तो पहले तो सादगी धारण करोगे, इच्छाएं कम करोगे, उसके बाद जब सारा विज्ञान पढ़ोगे समझोगे अच्छी तरह से, ईश्वर की कुछ उपासना करोगे, उससे बुद्धि आपकी तीव्र होगी। मां जी कहते हैं बुद्धि बलवान हो जाती है मंत्र जाप करने से, तो बुद्धि में बल आएगा, उस बल के आधार पर फिर आपके अंदर ईश्वर के इस संसार के प्रति वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य की स्थिति का मतलब है कि मन के अंदर कोई भी जब वासना उठेगी, कोई भी इच्छा उठेगी, आपको कहां बवाल आ गया, वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। फिर इच्छा का उठना आपके लिए बोझ बन जाएगा, वो हालत होगी कि आप उससे मन से ऊपर उठने की कोशिश करो, तब ईश्वर अंदर अंदर आपके कृपा करेगा कि उस क्षेत्र में ले जाएगा आपको जो बुद्धि से ऊपर का क्षेत्र। तो मूर्ति उपासना से रूप की उपासना से ये काम आपका कहां हो सकता है, संभव ही नहीं। मैं इसी का 13वां वचन पढ़ रहा हूं, मूर्ति पूजा के सिद्धांत का। कहते हैं सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग्य है। वो आप देखो पूजा किसकी बता रहे हैं, सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप पूजने योग्य है, ना कि महज स्थूल आकार। स्थूल आकार की परस्तिश मुक्ति नहीं दे सकती जब तक उनके सही आदर्श को धारण ना किया जावे। सत्पुरुष के जीवन का जो आदर्श है वो वही आदर्श है जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया और ग्रंथों में ज्ञान के रूप में लिख के छोड़ गए, यही उनका आदर्श। तो उनके स्थूल आकार की जो पूजा है वो आपको मुक्ति या कल्याण नहीं दे सकती, उनके आदर्श को ही हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक गुरु नहीं तब तक हमारी गति भी नहीं, क्योंकि गुरु जब तक नहीं आप मनमानी करोगे ना, जैसा आप लोगों से सीख लोगे, जैसा आपके मन में धारणा होगी, कहोगे मैं तो ऐसा समझता हूं, मेरी तो यही श्रद्धा है, मेरी यही आस्था है। आस्था है तो ठीक ही है मेरी, अरे आस्था वही बात जैसे उदाहरण दिया गया कि मगरमच्छ पर आस्था आ गई कि मुझे पार करा देगा, तो आस्था आपको बचा थोड़ी देगी, वो डूब देगा आपको। आस्था यदि गलत है आपकी तो डूबो देगी आपको। तो आस्था आपकी ठीक हो इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण किसी पूर्ण गुरु पर आपका विश्वास आना चाहिए, वहीं से आप सीखना शुरू करोगे, उस गुरु के माध्यम से ही आप ईश्वर की ठीक पूजा करने शुरू करोगे, नहीं तो आगे पूजा टेढ़ी मेढ़ी चलती रहेगी। आगे कहते हैं सतपुरुष अनेक स्वरूप में होते आए हैं, यानी उनकी प्रकृति का नाम रूप गुण और कर्म न्यारा न्यारा होता आया है, मगर उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है वह एक ही धार का है, यही समता है। अभी जो सारा आपने सुना समता के ऊपर सतपुरुषों की समानता, ये एक वचन उसकी पुष्टि कर रहा है। फिर सुने सतपुरुषों सतपुरुष अनेक स्वरूप में होते आए हैं, किसी का नाम जो है मोहम्मद है, किसी का नाम ईसा है, किसी का नाम मंगत है, किसी का नाम कबीर है, किसी का नाम नानक है, विभिन्न नाम रूप है उनके। सतपुरुष अनेक स्वरूप में होते आए हैं, उनकी प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है शरीर, उनकी प्रकृति का नाम रूप गुण और कर्म न्यारा न्यारा होता आया है। मोहम्मद साहब ने लड़ाइयां करी, महाजी ने कोई लड़ाई नहीं करी, तो कर्म भी उनके न्यारे न्यारे होते हैं, मगर उनके अंदर जो ज्ञान स्वरूप है, जो उनकी आत्म स्थिति है, जो उनकी रहनी है, वो एक ही धार का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमने हमने गुरु शरीर को नहीं बनाया है, हमने उस आत्म स्थिति को गुरु बनाया है जिसमें हमारा गुरु स्थित है। शरीर तो उनका भी जड़ है। महाजी कहते ना, प्रेमी इन लकड़ियों को दबा के क्या लोगे, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है, बड़ा साफ कहते थे वो। क्योंकि उनकी आत्म स्थिति हमारा कल्याण करेगी ना, वही तो हम पे कृपा करेगी या शरीर कृपा करेगा। इस वास्ते सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप जो उनका सच्चा जीवन था वह पूजने योग्य है। यहां पूजा का निर्णय हो रहा है। सत्पुरुषों का जो ज्ञान स्वरूप है वह पूजने योग्य है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर को ही तो कहते हैं और क्या है, ब्रह्म को ही तो कहते हैं, जिसको कोई निर्वाण कर रहा है, कोई किसको उसको अग्नि कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन है वो ज्ञान स्वरूप, वो ईश्वर ही, वो पूजने योग्य। जब तक तुम उसकी पूजा नहीं करोगे, इस अपने बुत, इस अपने शरीर से ऊपर कैसे उठ पाओगे आप? जब तक ईश्वर को आकार समझते रहोगे, अपने को भी आकार ही समझोगे। इसका अंदर जब तक अपने को शरीर समझ रहे हो, आपका उद्धार कैसे हो जाएगा बताओ? आप खुद जानते हो कि शरीर की मौत हो जाती है, और सारे सत्पुरुषों के शरीर की भी मौत हो गई। उद्धव का आपने उदाहरण सुन लिया कि 15 वर्ष कृष्ण के साथ रहा, लेकिन कृष्ण के तत्व ज्ञान को वो नहीं समझ, उनके ज्ञान रूप को नहीं समझ पाया, वो कृष्ण के शरीर पर ही डिपेंड करता रहा, तो अंत में कृष्ण के शरीर ने धोखा दे दिया उसको, उसको तो खत्म होना ही था। तो कृष्ण ने यह कहा कि उद्धव, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, बद्रिकाश्रम में जाकर अपनी कमी पूरी करो। जो ज्ञान तुमको समझाया गया है, जो साधना तुमको समझाई गई है, उससे उसको अपना के अपनी कमी खुद पूरी करो, उस तत्व ज्ञान का खुद दर्शन करो। तो पूजा हमको सही रूप में जब तक नहीं अपनाएंगे, हमारा कल्याण संभव नहीं है। और देखें अन्य शास्त्र इस मूर्ति की पूजा के बारे में क्या करें, उनकी बात भी सुन लें। एक ब्रह्मांड पुराण है, उसका एक चैप्टर है अध्यात्म रामायण। उसमें एक राम कौशल्या संवाद आता है, जिस समय माता कौशल्या की मृत्यु होने वाली है, मौत का वक्त उनका नजदीक है, राम उनके पास है। तो माता कहती है कि राम, यद्यपि तू मेरा पुत्र है, परंतु मैं जानती हूं कि तू ईश्वर है। देखिए, मां को ये अज्ञानी नहीं थी उनकी, वो जानती थी कि हाँ ये जो है वो अवतार है। अब तू मुझको ये समझा कि तेरे असली रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं। देखो मां क्या कहती है राम से, अब तू मुझको यह समझा कि तेरे असली रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं। फिर वो सारा आगे बातचीत चलती है। हमारे मतलब की जो बात है वो मैं केवल आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो राम कहते हैं, तावत माम अर्चयेत देवम प्रतिमादो स्वकर्म भी यावत सर्वेशु भूतेषु स्थितम चा आत्मनि न स्मरेत। कहते कि तावत माम अर्चयेत देवम प्रतिमादो स्वकर्म भी, कहते मुझ परमात्म देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा अर्थात मूर्ति आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए, कहते यावत सर्वेशु भूतेषु स्थितम चा आत्मनि न स्मरेत, जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित ना जाने। अब राम क्या कह रहे हैं कि जो लोग मेरे रूप की उपासना करते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा, कहते ना ये बर्तन साफ कर रहे हैं, उनके वस्त्र बदल रहे हैं, उनको नहवा रहे हैं, ये कर्म है, तो अपने कर्मों के द्वारा जो ये पूजा होती है, वो कहते हैं ये तभी तक करनी चाहिए जब तक कि बुद्धि का इतना विकास ना हो जाए कि वो ये समझने में समर्थ हो जाए कि जो राम है, जो वास्तव में जो ईश्वर है, वो सर्व सृष्टि में बसे हुए हैं और मेरे शरीर के अंदर भी स्थित है। जब बुद्धि ये बात समझने लायक हो जाए, उस समय उस पूजा को तिलांजलि दे देनी चाहिए। अब देखिए, ब्रह्मांड पुराण, सारे पुराणों की जो व्याख्या करते हैं पंडित लोग, वो मूर्ति उपासना की ही करते हैं। आप कहीं सुन लीजिए, चाहे जितने भागवत पुराणों का होता है, सब वही बात होती है। कृष्ण कहीं नहीं, पूरी गीता में कृष्ण ने कहीं लिखा कि मेरे रूप की उपासना करो, और कृष्ण का संदेश तो गीता में ओरिजिनल। जितने भागवत कथाएं होती हैं, सब में कृष्ण की पूजा सिखाई जाती है। तो गीता के विरुद्ध जो है वो पंडित जो है आपको कथा सुना रहा है। अब पुराण की बात मैंने इसलिए आपको सुना कि पुराण में खुद क्या लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए आप। पुराण खुद ही राम के रूप की उपासना का खंडन कर रहा है, लेकिन इस अध्यात्म पुराण को जो कोई पंडित सुनाएगा ना, तो राम के रूप की ही उपासना सिखाएगा आपको। कभी मौका मिल जाए सुनने का तो कथा, तो आप सुन के देख लीजिएगा। ये बात निकाल के कोई नहीं दिखाएगा आपको, साफ लिखा है। बुद्धि का एक अवस्था होती है, एक बालक है उसको आप क्या समझाओगे कि ईश्वर निराकार है? एक 5 साल का बच्चा समझ पाएगा आपकी बात को? तो उस हालत में है तो उसको आप मूर्ति उपासना में लगा सकते हो, क्योंकि चलो कोई ना कोई अच्छे संस्कार बनेंगे, ईश्वर पर विश्वास तो आएगा उसका, ईश्वर भी है। लेकिन जब विकास हो जाए उसका, तो उसको सत्संग श्रवण करने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ग्रंथों के स्वाध्याय का मौका मिलना चाहिए, किसी गुरु की शरणागति उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो सही उपासना सीख सके और ईश्वर के बारे में सही रूप में वो जान सके। आगे और क्या कहते हैं, देखो एक महानिर्वाण तंत्र में पूजा की बात आती है, 4 प्रकार की पूजाएं बताई गई हैं। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावः तु मध्यमा, स्तुति ही जपो अधमो भावो वही पूजा अधमाधमा। कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सबसे जो उत्तम पूजा है, कहते हैं ब्रह्म के साथ एकाकार होकर जो उपासना की जाती है वो सबसे उत्तम पूजा है, जिसको गीता में कहा गया ज्ञानी भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। ये वही ज्ञानी भक्त की बात हो रही है आप। लेकिन ये पूजा तो समाधि में जाके हो सकती है, जब जीव पूरी तरह से ईश्वर के समर्पित हो जाता है, ये पूजा तो वहां होती है, ये तो हर कोई कर नहीं सकता। अब अगली पूजा क्या कहते हैं, इससे निचले दर्जे की पूजा कौन सी है? कहते हैं ध्यान भावा तु मध्यमा, कहते हैं ध्यान मध्यम पूजा है। अब ध्यान क्या होता है, समता विलास में जब पढ़े आप सिमरन वाला चैप्टर, तो वहां महाराज जी लिखते हैं कि भजन ध्यान समाधि, सिमरन भजन ध्यान समाधि। तो ध्यान क्या है, वो कहते हैं अंदर जब नाद प्रकट हो जाता है, नाद के रूप में ईश्वर या कुंडलनी के रूप में ईश्वर जब अंदर प्रकट होता है, तो ये जो सुरत है या जो बुद्धि है या जो जीव है या जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये उसके प्रति एकाग्र हो जाती है, उसमें लगी रहती है। ये हो क्या रहा है, ध्यान भावा तो मध्यमा, दूसरी अवस्था ध्यान की, पहली उत्तम हो ब्रह्म सद्भाव, तो वो है ध्यान की स्थिति। जब अंदर ईश्वर का आनंद प्रकट हो गया, उसमें जब सुरत लगी रहती है, ये है ध्यान, ये है दूसरी पूजा जो जीव करता है। लेकिन ये भी किसी किसी को मिलती है, ये भी आम व्यक्ति किसी को मिलती है, कोई तप करेगा सिमरन करेगा उसके बाद ध्यान की अवस्था आएगी तब ये पूजा करेगा वो। अब तीसरी पूजा क्या बता रहे हैं, स्तुति ही जपो अधमो भावो, इससे जो अधम पूजा है, निश्चित दर्जे की पूजा है, वो है जप, जो कि हम लोग किया करते हैं। एक सिद्ध मंत्र मिल गया या किसी को गुरु मिल गया तो नाम मिल गया उसको, नहीं तो वो जो है वो जो जाप करते हैं, ये फिर हमारी पूजा है जो इससे निचले दर्जे करते हैं। और इससे भी निचले दर्जे की पूजा कहें वही पूजा अधमा धमा, और जो ये बाहर की पूजा इसको मूर्ति पूजा कहते हैं, ये सबसे अधम पूजा है, सबसे निचले दर्जे की पूजा है, या यूं कह रहे हैं ये बच्चों की पूजा है। कहते दूसरा शब्द कहें तो ये अज्ञानियों की पूजा है, क्योंकि बच्चे अज्ञानी होते हैं, जिनकी बड़े 80 वर्ष की आयु हो गई लेकिन बुद्धि अभी बच्चे जैसी है, कोई ज्ञान हासिल ही नहीं किया जीवन में, तो वो भी बच्चे ही है। तो उन लोगों के लिए ये पूजा सबसे अधम पूजा पर मिनट है। तो देखो निर्वाण तंत्र जो निर्वाण तंत्र को मानने वाले लोग हैं वो शिव की उपासना करते हैं, निर्वाण तंत्र में शिव की उपासना नहीं लिखी है। शिव क्या है वो, ये तो कोई आपको विद्वान ही बताता है, तो कहीं ये बात नहीं, ना पुराण में लिखी है, ना तंत्र में लिखी है, ना किसी शास्त्र में लिखी है, हमने मनमानी अपनी कर रखी है। हर जगह आत्मा की पूजा की बात हुई है। अब इससे बड़ा आपका आश्चर्य क्या होगा कि सारी भागवत सप्ताह हर शहर में हुआ करते हैं और हर जगह कृष्ण की पूजा सिखाई जाती है, और कृष्ण ने जो खुद गीता में संदेशन का असली संदेश, जिसमें मिलावट आज तक नहीं हुई है, वहां तो कृष्ण की पूजा की बात ही कोई नहीं हो रही, वहां आत्मा की पूजा की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो कुछ भी पूजा के नाम पे हमको सिखाया जाता है, यह भारत में नहीं सारे विश्व में, वो सारा का सारा पाखंड है, कोई सही बात बताने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सही कर ही नहीं रहा, कि सारी पूजा सारे धर्म का प्रचार प्रसार जो है उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन बना लो, मोहम्मद में भी मोहम्मद बनाने की बड़ी परंपरा, हिंदुस्तान में तो कितने मोहम्मद बना डाले उन्होंने, कितने से मुगल आए थे, कितने आज मुसलमान है हिंदू। तो ये धर्म का जब स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होने लगता है तो पूजा भी आपकी आपको गलत सिखाई जाती है। इसीलिए अब जब किसी सतपुरुष की शरण में आप आए हैं तो यहां से कम ठीक पूजा क्या होती है सीख कर जाओ। ये मत करना कि दूसरों की पूजा बदलने लग जाओ, अभी आपने दूसरों की पूजा नहीं बदलनी, अपनी पूजा ठीक कर लो, अपनी बुद्धि को ठीक कर लो, आप जब सही रूप में इसको अपनाओगे, जब सही रूप में आपका जीवन इस आदर्श के अनुकूल बनेगा, उस समय आपकी स्थिति होगी कि आपकी बात को सुनने वाला भी कोई होगा, आपकी बात मानी भी जाएगी, उससे फिर और लोगों का कल्याण हो सकता है। पहले अपना कल्याण तो कर लो। इसीलिए ये जो विषय आपके सामने रखा गया था, इसका समापन के लिए एक दोहा पढ़ता हूं मैं। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरे जो जन्मे ते मर जाए। जो दूसरे को सिमर रहे हो, जिस रूप तो दूसरा है ना, फिर वो तो उसका जन्म भी है और मृत्यु भी है, इसलिए तुम्हारा भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने वाला। जब उस एक को सिमरोगे जो तुम्हारे रोम रोम में रमा हुआ है, जो सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ है, उस रमते हुए राम को जब सिमरोगे, तब आपका कल्याण होगा, तब आपकी सही उपासना होगी। ओम ब्रह्म सत्य।